నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నాష్టకే. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంధ 4 అధ్యాయ 23 శ్లోక సంఖ్య 28 మహారాజ పితృ కా భగవత్ ధామ్ గమన్. సహ వంచితః బత ఆత్మభూ కృష్ణేణ మహతా భువే లబ్ధా ఆపవర్గ్యం మానుష్యాం విషయేషు విసర్జతే. సపంచితో పతాత్మధూ కృష్ణ మహతా భువి లబ్ధాపవర్గ్యం మానుష్యం విషయేషు విసర్జతే. సపంచితో పతాత్మధూ కృష్ణ మహతా భువి లబ్ధాపవర్గ్యం మానుష్యా విషయేషు విసర్జతే. निश्चय ही आत्मध्रुव अपने से ईर्ष्या करने वाला कृष्णेण कठिनाई से महता महान कार्यों से भोगी इस संसार में लब्धा पाकर आपवर्ग्यां मोक्ष का मार्ग मानुष्यम मनुष्य के शरीर में विषयेषु इंद्रिय तृप्ति के कार्य में वासनाओं में विसर्जते लगा रहता है. अनुवाद. जो हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें, जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ऋष्यादि समझना चाहिए। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्र तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो। कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं और इसलिए वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें करते हैं। दूसरे शब्दों में वे उच्चतर लोकों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार योगी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक प्रकृति के फंदे से छूटने के लिए चिंतन में मग्न रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहता है, किंतु वे सभी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न माने जाते हैं, क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के लिए कोई न कोई सुविधा चाहते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 7वें अध्याय श्लोक संख्या 23 में घोषणा की है कि अंतवत्तु फलं तेषां, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक हैं। इस तरह योगियों कर्मियों ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक हैं। यही नहीं, कृष्ण कहते हैं तद भवत अल्प मेधसा, वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए है। विषय शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। कर्मी सीधे कहते हैं कि उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। योगियों को भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि की। वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़े बड़ा बनने में सफल होने का प्रयास करते हैं, अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं, या विज्ञानी बनकर अनेकानेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार करना चाहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से तादात्म्य चाहते रहते हैं। इस प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृप्ति ही रहता है, किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं होते। वे तो भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करके संतुष्ट हो लेते हैं। यद्यपि वे सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हैं, तो भी उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त न कर सकते हो, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। देवताओं की पत्नियां इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित कहकर भर्सना करती हैं। जो इस प्रकार कर्म में लगे हैं वे निस्संदेह आत्महा अर्थात अपनी हत्या करने वाले हैं। श्रीमद्भागवतम 11वां स्कंध अध्याय 20 श्लोक संख्या 17 में कहा गया है, नितेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले न भस्व तेरितम भवाधित न तरित स आत्महा। जो मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है तो उसे एक सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर एक उत्तम नाव स्वरूप है। मनुष्य जीवन में गुरु अच्छे नाविक या काम नाविक का काम करता है। श्री कृष्ण की कृपा से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती हैं, जो कृष्ण के उपदेश तुल्य हैं। मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण के आदेश अनुकूल हवाएं हैं और गुरु नाविक हैं। गुरु जानते हैं कि पाल को कैसे साधा जाए कि हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खेले जाए। किंतु यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो यह मनुष्य जीवन व्यथा नष्ट हो जाता है। समय था जीवन को नष्ट करना आत्मघात जैसा है। इस श्लोक में लाभाप वर्गम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार आप वर्गम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं है, अपित सालोक्याज सिद्धि है, जिसका अर्थ है उस लोक को प्राप्त करना जिसमें भगवान निवास करते हैं। मोक्ष पांच प्रकार के हैं, जिनमें से सायुज मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना, क्योंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आवश्यकता आशंका बनी रहती है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं कि इस मानव जीव जन्म में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना होना चाहिए। सब वंचित है, सब सूचित करते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच ही वह ठगा जाता है। समस्त भक्त भगवान के धाम वापस जाने में रुचि न रखने के कारण शोच्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाब्जम्। वंदेहं श्री गुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन विश्वभान सुते देवी ब्रह्मा हरिप्रिय वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब वंचितो वतात्म ध्रुव कृष्ण महता भूवि लाभाप वर्ग मनुष्यम विशेष विसर्जते। जो मनुष्य संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है तो उसे ठगा गया अथवा अपने ही प्रतिष्ठाल समझना चाहिए। इस नए वर्ष के शुभ दिन पर मैं संपूर्ण वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का भागवतम क्लास जो है ये शब्द देवताओं की पत्नियों के मुख से निकल रहे हैं। ये देवताओं की पत्नियां जीवन के कड़वे सत्य का वर्णन कर रही है और इस कड़वे सत्य का हम लोग को अनुभव है। इस पृथ्वी से लेकर के उच्च लोकों तक सभी लोग इंद्र तृप्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियों के पास असीमित इंद्र तृप्ति की सुविधाएं हैं, वो समझ सकती हैं। लेकिन जब उन्हों पत्नियों ने देखा किस प्रकार से महाराज पृथ्वी की पत्नी महाराज पृथ्वी के साथ ही सहगमन साथ में भगवान के धाम गई तो लोग को आश्चर्य हो गया। देखो इस संसार में किस प्रकार से लोग दिन रात कठिन परिश्रम करके मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है भगवान के धाम जाना उसे वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। श्रीमद्भागवतम के पन्ने में इस कड़वे सत्य का वर्णन किया गया है। भगवान ऋषभदेव पांचवें स्कंध में वर्णन करते हैं, पराभवस्तावत अबोध जाता है यावत जिज्ञासत न आत्म तत्व। कहते हैं कि इस संसार में पराभवस, वो व्यक्ति हारा हुआ है जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, चाहे वो कठिन परिश्रम करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिल्डिंग या स्वर्ग लोक तक चला जाए तो भी वो हारा हुआ है। हर व्यक्ति, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में चार प्रकार के लोग का वर्णन करते हैं, कर्मी, योगी, ज्ञानी, अंत में भक्त। तो जो कर्मी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सभी लोग हारे हुए हैं भागवतम के अनुसार, क्योंकि किसी न किसी ढंग से, जैसे कर्मियों, कर्मी तो सीधा ही ओपनली सीधा ही इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, योगी और ज्ञानी की इंद्रिय तृप्तियां थोड़ा छुपी हुई होती, लेकिन उच्च कोटि की इंद्रिय तृप्तियां हैं उनकी, वो सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ये तीन, जो भी व्यक्ति संसार में इंद्रिय तृप्ति चाहता है वो हारा हुआ, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो इस भौतिक जगत में हर जीव उसमें लगे, 84 लाख योनियों में हर जीव को यही चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुखम अंद्रिकम दत्ता देह योगेन देहिना, कहते हैं जो इंद्रियों से संबंधित सुख है तो सब संपूर्ण शरीरों में उपलब्ध है, और भी दैवात, दैव के प्रबंध के द्वारा वो पशुओं को, पक्षियों को, 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर किसी को परिश्रम नहीं करना पड़ता, देवताओं को भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ये मनुष्य को ही परिश्रम करना पड़ता है इंद्र तृप्ति के लिए। क्यों परिश्रम करना पड़ता है? इसलिए कि मनुष्य के लिए ये इंद्र तृप्ति नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए, दूसरी शरीर में, दूसरी शरीर इंद्र तृप्ति के लिए ही बनाई गई है, उसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जीव से तत्व जिज्ञासा न तत्तोष कारण, ये मनुष्य शरीर में एक ही है, हम जिज्ञास तत्व जिज्ञासा भगवान को कैसे समझे, उनकी जिज्ञासा इसके लिए ही बनाई गई। इसलिए हम देखते हैं कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम करता है तो वहां से दुख प्रारंभ हो जाता है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, आदमी ज्यों ही वो सुख के लिए, सुख का अर्थ इंद्रिय तृप्ति, ज्यों ही वो परिश्रम प्रारंभ करता है उसी समय से दुख प्रारंभ हो जाता है, और जब जब ये जितनी मात्रा में वो इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्यागता है उतनी ही मात्रा में वो सुखी होता है, उतनी मात्रा में वो, उसकी भूख मिट जाती है, उसकी प्यास मिट जाती है। अगर पूर्ण रूपेण इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाता है तो यहां वो सुख पूर्ण रूपेण सुखी हो जाता है। मनुष्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति ही दुख का कारण है, और आश्चर्य की बात है, माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति इतनी आश्चर्यजनक है कि माया शक्ति की दो, माया की दो शक्तियां हैं, अवर्णात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। जब ही जीव भगवान को भूलता है माया के चंगुल में आता है, जो ही माया के चंगुल में आता है जीव, माया जो है सबसे पहले उस ज्ञान को ढक लेती है, और जब ढक लेती है तो कुत्ते जैसे, बिल्ली जैसे, गधे जैसे काम कराती है, वो फेंकती जाती 84 लाख योनियों में। वास्तव में माया बद्ध अवस्था में जीव जो भी कार्य करता है उसके लिए 1% आधा परसेंट भी लाभकारी नहीं है। अगर यह किसी को शिक्षा दी जाए, कर्मियों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे हरे कृष्ण वाले मिसगाइड कर रहे हैं, हरे कृष्ण वाले सबसे खराब लोग हैं। और वह सत्य ही है, वो सत्य अगर देखा जाए तो, अगर हम अपने जीवन को टटोल कर देखें तो, अगर 25 साल 50 साल 75 साल बीत गया है, अगर सोचे उसको क्या मिला, श्रम एव ही केवलम, श्रम ही मिला है, परिश्रम ही हाथ लगता है, दूसरा कुछ भी नहीं। न उत्पादित यदरति श्रमे वही केवल। यदि भगवत प्रेम को हमने उत्पन्न नहीं किया, उस तरफ प्रगति नहीं की, तो हमारे हाथ में सब लोग रोते हैं। जितने अधिक लोग भौतिक, जो थोड़ा संस्कृति है, कल्चर है, उनको रोना कम पड़ता है, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे उनका ध्यान देते हैं, समाज में भी उनका सम्मान थोड़ा होता है। भारतीय संस्कृति में थोड़ा है ऐसे, बच्चे आके बोलते हैं तोतली भाषा में तो ग्रैंडफादर को पितामह थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जितनी मात्रा में भौतिकता में बढ़ता है, बुढ़ापा ही बुढ़ापे में उसके परिवार के लोग, समाज के लोग, देश के लोग, समाज के लोग भी निगलेक्ट कर देते हैं। कोई चाहे कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही ये भौतिक प्रगति का ये नेचर है, स्वभाव है, दूसरे का तिरस्कार करना। पर जब तक कोई व्यक्ति भौतिकवादी की इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर रहा है, वो आदर का पात्र है, उसकी पूजा करेगा। लेकिन जब ही उसकी इंद्रिय तृप्ति की भावना में बाधा आती है, वो तुरंत ही तिरस्कार करता है, तिरस्कार। अब सोचे अगर देखा जाए तो सभी लोग रोते हैं, लेकिन माया इतनी शक्तिशाली है, ज्ञानी रोते हैं, योगी रोते हैं, भोगी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सभी लोग रोते हैं। इसलिए श्रीपाशुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, धर्म से ही अपवर्गस्य, यहां स्वर की पत्नियां का लब्धाप वर्ग मानुष्यम, मनुष्य का उद्देश्य है अपवर्ग की तरफ। प्रभुपाद जी कई लेक्चर में ऐसे वर्णन किए हैं, ये संसार जो है पावर के समान है, प प म प का यहां हमको परिश्रम करना पड़ेगा, इतना परिश्रम करना पड़ेगा कि मुंह में फेन आ जाएगा। आप देखिए, परिश्रम किया, फेन आया, फिर भी कुछ मिला नहीं, व्यर्थ ही गया। तो यह संसार ऐसा है, इसलिए भागवत का धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। हमारा जो कार्य है, जितने भी हमारे कार्य हैं, हमारे जितने भी कार्य हैं, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति की तरफ नहीं होना चाहिए, वो अपवर्ग की तरफ, मुक्ति की बढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि भौतिक शरीर मिली है, ये भौतिक शरीर मिली है, इस भौतिक शरीर की जो आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति है, ये भी श्रीमद् भागवतम वेद शास्त्र इंद्रिय तृप्ति से वंचित नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कितना है को होना चाहिए, कामस न इंद्रिय तृप्ति जीवत यावत लाभता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। कहते जितनी आवश्यकता है, जैसे आप भोजन बनाते हैं, भोजन दाल में सब्जी में नमक उतना ही डालते हैं जितनी आवश्यकता है, अधिक डाल देंगे तो आप खा नहीं सकेंगे, कम डाल देंगे तो डिस्टेस्ट हो जाएगा, स्वाद चला जाएगा, अधिक डालेंगे तो स्वाद चला जाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ा सम की रचना इस प्रकार से किया गया है कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, बहुत थोड़ी गृहस्थ आश्रम में थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति, वो भी थोड़े समय के लिए, बहुत आप देखिए थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति और तो भी कितनी खतरनाक है। थोड़ी सी, एक बार जीव जो ही गृहस्थ आश्रम में फंस जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है, शांति से भक्ति कर सकते हैं, कोई शांति से गृहस्थ लोग भक्ति नहीं कर पाते, कैसे कर सकते हैं? कैसे है इस कलयुग में स्पेशली एक गृहस्थ को चलाना आसान है, एक गृहस्थ को चलाना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में, और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड देश, जो सबसे पिछड़ा हुआ देश है, थर्ड वर्ल्ड कहते हैं उसको, तो थर्ड वर्ल्ड कहते हैं तो वो सोचते हैं तो है, लेकिन वहां थोड़ा आसान है। जो थर्ड वर्ल्ड जैसे भारत है, अफ्रीका है, ये सब देश में गृहस्थ चलाना, वहां फिर भी अभी वहां अगर चाहे तो पत्नियां काम ना करें, नौकरी पर ना जाए तो भी जीवन चलता है। लेकिन सबसे प्रगतिशील जो देश है, यूरोपियन अमेरिकन, वहां बहुत मुश्किल है, वहां केवल नाम गृहस्थ का है, बहुत ही मुश्किल है। आप देखिए, क्योंकि वो प्रगतिशील है, भौतिकता में बहुत आगे है, तो वहां तो हस्बैंड वाइफ को वो अगर ना भी किसी के पास तो भी शौक बस इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं। आप सब जानते हैं, देखते हैं, वहां बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं लोग कहते हैं कि वो वास्तव में सुख है, और वास्तव में सुख तो होता है कृष्ण भावना में, भगवान के चरणों में ये भक्त। लेकिन फिर भी जो वानप्रस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो इनकी इंद्रियां कंट्रोल में, इसलिए उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी आवश्यकताएं सीमित है। और इस संसार में स्पेशली कलयुग में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अब देखिए ये ठंडी का महीना है, और पहले के लोग तपस्वी होते थे तो इतना जैकेट स्वेटर ये सब लगाने कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कलयुग में हम इतने तपस्या हमारे हाथ से निकल गई, इतने कमजोर हो गए, ये कपड़े पहनने के लिए भी कितने परिश्रम करने पड़ेंगे, कितने पैसे लाने पड़ेंगे, और शरीर कमजोर है इसलिए अगर कपड़े नहीं पहने बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो कोई कार्य भी नहीं कर सकेगा, योग भी नहीं कर सकेगा, भक्ति भी नहीं कर पाते। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग समय जो है शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से सबको कमजोर बना देता है, हर आदमी कमजोर है। इसमें इसलिए कहते हैं कि यहां प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, ये शरीर तभी शक्तिशाली होती है, कहते हैं ये शरीर निर्देहम आद्यम पलवम सुकल्पम, ये शरीर जो है नौका के समान है, ये नौका की ताकत तभी है जब उसके ऊपर नाविक है। नाविक का अर्थ है गुरु। ये मनुष्य शरीर नौका के समान बताई गई, इस नव इस संसार को भवसागर कहते हैं, इस भवसागर पार करने के लिए यही योग्य शरीर है, और ये शरीर तभी इसमें ताकत है, कितनी भी मजबूत शरीर हो लेकिन नाविक नहीं है तो नौका घूमते घूमते डूब जाएगी। मान लो नाविक भी कहते हैं, नाविक का अर्थ है गुरु, और नाविक है वो नाविक एक भगवान की शिक्षा के आधार पर प्रचार नहीं, अपने शिष्यों को सिखा नहीं रहा है तो जीव को डुबा देगा, वो भी नौका को डुबा देगा। इसलिए संसार में बहुत आवश्यकता, इस शास्त्र लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं है, सच्चे साधु नहीं है, ये तो हम लोग भाग्यशाली हैं श्रील प्रभुपाद जी के शरण में हैं, इसलिए ये बातें समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। बाहर के लोग तो कोई भी बाहर लोग गुरु का अर्थ है तिलक कर ले जटा रख ले वही गुरु, गुरु वो बहु शांति वित्त संतापहार का तस्मिन गुरु न सस्या चित्त संतापहार का। शास्त्र में कहा गया कलयुग में बहुत साधु मिलेंगे, बहुत गुरु मिलेंगे, वित्त संतापहार का, केवल पैसे की गर्मी, पैसे में गर्मी है, जेब में रख लो भी गर्म हो जाता, कहीं रखो लोगों को आकर्षित करता है, ये तो वर्णन करने की आवश्यकता अधिक नहीं है। और वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जो कि पैसा आता है तो पैसा बोलने लगता है, आदमी नहीं बोलता है, पैसा बोलता है, कितनी ताकत है उसमें। तो आजकल तो और साधु भी हैं तो पैसे के लिए वो धन वो अपने इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, वो नहीं सोचे हैं कि धन जो है भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति का है, जो सच्चे साधु हैं आपकी लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास रहा तो आप मिस यूज करेंगे। इसलिए जो सच्चे साधु, इसे प्रभुपाद जी चाहते थे, ठीक है जितना ला। एक बार प्रभुपाद जी के पास इलाहाबाद प्रयाग में एक शायद कानपुर के बहुत संपन्न व्यक्ति आए, इंडस्ट्री थी उनके पास, तो प्रभुपाद जी से मिले, प्रणाम किए, जो सज्जन व्यक्ति थे, सभ्यता थी, प्रणाम करके फिर प्रभुपाद जी पूछना चालू किए, तो बोले कि हमारी एक फैक्ट्री कानपुर में है, दो खानपुर में है, कलकत्ता में है, तो वहाँ है वहाँ है, ठीक है ठीक है। बहुत दुखी हूँ। तो प्रभुपाद जी हिजोली ने गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाए, बोलते लिख लो उनका एड्रेस ले लो, मैं आके सब लूंगा, आप सुखी हो जाओगे। तो कहने का अर्थ है जो सच्चे साधु हैं वो जानते हैं कि जीव कैसे, क्योंकि जब तक भगवान के चरणों की सेवा में कोई लगा नहीं, कोई सुखी नहीं हो सकता। ज्ञानी हो तो क्या, इससे श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिद्धों में कहता, अतः कृष्ण चरणम भोजन सेवा निवृत्त केम सम, कहते हैं कैसे हो सकता है जो भगवान के चरणों की सेवा में है वो दुखी हो, सवाल ही नहीं है। लेकिन कहते हैं जो भी भुक्ति मुक्ति स्प्रिहावत हृदय वर्तते, कहते हैं जब तक देखिए हम भक्त हैं यदि भुक्ति मुक्ति की भावना में भक्ति कर रहे हैं तो हमारी मिक्स भक्ति है। हालांकि हम भगवान के चरणों की सत्य गुरु सतगुरु हमारे पास हैं, महामंत्र सत्य चीज है, श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद की भावार्थ हमारे पास है, मार्गदर्शन है, सब कुछ होने के बाद भी भक्ति अपने हाथ में है। 90% भक्ति तो हमारे अपने हाथ में, करना तो हम लोग को है, परहेज करना हमारा कार्य है, अपनी भावना को हम समझते हैं। तो इसलिए जब हम यदि भोग की भावना, कहने का भोग की भावना का अर्थ है कर्मी और योगी की भावना में भक्ति का मिश्र भक्ति, मुक्ति की भावना है ज्ञानी की भावना में भक्ति का। तो कहते हैं श्रीपाद रघु गोस्वामी भक्त स्वामी सुन करते हैं मुक्ति भुक्ति स्प्रियावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखद यात्रा कथम अभ्युदयो भवे। कहते हैं जब जीव जो है कोई भी भक्त, शास्त्र में कहा गया कि निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत, भक्ति कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है कृष्ण प्रीत्यार्थे, कृष्ण भगवान की प्रीति के लिए हम कैसे कार्य करें, उसके मन वचन कर्म इहा से हरिदास कर्मणा मनसा गिरा। वो अपने मन वाणी और कर्म का शरीर से हमेशा कृष्ण की सेवा करता है तो उसे शांत होना चाहिए, वो मुक्त है। निखिला स्वप अवस्था से जीवन मुक्त सब उच्चते, जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर कदम पर वो उसका मुक्त है। ऐसा नहीं भक्त मुक्त का अर्थ है कहीं बैठ गया, मुक्त का अर्थ वो चलता है, बोलता है, कार्य करता है, वो हर कार्य करते हुए भी वो मुक्त है, क्योंकि हर कार्य जो है भगवान की प्रीति के लिए करता है। जब जीव हम देखते हैं कि जीव हर भक्त जो है भगवान की प्रीति के लिए कार्य करते हैं तो क्यों अशांत हैं? इसे श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रियावत हृदय वर्तते, हमारी भावना कैसी है, इंपॉर्टेंट भावना का है। यदि हमारी भावना भोग की भावना है और मुक्ति की भावना है तो यहां तक कि यदि हम 64 माला भी करेंगे तो भी शांति नहीं मिलेगी, सुखी नहीं रहेगी। हालांकि माला करने से धीरे 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 भोग की भावना से मुक्त हो जाते हैं, दूसरी भावना हमारी मुक्त हो जाती है, लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भक्ति करने से हम साधु को प्रसन्न करिए, इवन हम मिक्स भक्ति करते हैं, किसी न किसी प्रकार से यदि हम भक्ति में लग जाते हैं तो हम साधु संत को प्रसन्न करते हैं, और साधु की सेवा से भक्तों की संग से धीरे 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 हमारी जो है विद्ध भक्ति या मिक्स भक्ति शुद्ध भक्ति में बदल जाती है। ये भक्ति का स्वभाव है। भक्ति अंततः संपूर्ण अपराधों से, संपूर्ण अनर्थों से अंत में हमको भक्ति ही मुक्त करती है अंत में। और जब हम भक्तों के संग में होते हैं तभी भक्ति होती है। तो वास्तव में दवा भक्ति ही है। संपूर्ण अपने प्रयास से कोई व्यक्ति अपराध से बच नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जो हम जब तक हम तीनों गुणों के अंदर हैं तो हमारी प्रकृति है वो हमको हमेशा ही अपराध कराती है। अपराध करने के बाद सोचते हैं, प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं या खुद को कोसते हैं, फिर भी व्यक्ति अपराध करता है। अपने प्रयास से, अपना प्रयास है भक्ति का साधन करना, वही अपना प्रयास है। जब हम साधन भक्ति में लगते हैं, क्योंकि जो साधक हैं उनसे ही अधिक अपराध होते हैं। जो साधक से ऊपर कैटेगरी के भक्त हैं उनसे अपराध होने की बहुत कम संभावना होती है। भक्त स्वामी सिंधु ने सिपाद्रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति का वर्णन करते हुए वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति का वर्णन किया। जो वैधी भक्ति के विद्यार्थी हैं वो हमेशा दोष ही देखते हैं, हर जगह दोष ही देखते हैं, केवल स्वयं में नहीं देखते। लेकिन जो वैधी भक्ति से में दृढ़ रहते हैं वो अपनी वैधी भक्ति में दोष देखते हैं, वो अपनी वैधी में दोष देखते हैं। लेकिन जो वैधी भक्ति से उच्च वैधी भक्ति करके और स्वाभाविक उनकी भगवान की रुचि में सेवा में रुचि हो गई है तो केवल अपनी सेवा ही देखते हैं, किस प्रकार हम कृष्ण को प्रसन्न करें। तो उसे अपराध की, क्योंकि जो व्यक्ति अपराधयुक्त व्यक्ति कर रहा है उसने भी थोड़ा गुण देखेंगे, उसको हमको मौका दिया, हमको ये किया, यह व्यक्ति का आपका अपमान भी करता है तो वो देखेंगे, वो खुद या कोई वो देखे ना ये अपमान तो नहीं, ये तो हमारे ऊपर कृपा है, ये भक्त का स्वभाव है, उच्च कोटि के भक्त का। तो कहने का अर्थ है जब तक हम वैधि भक्ति का यही लक्षण है, ऐसे यही है कि यह व्यक्ति में कितनी दोष दृष्टि रख रहा है, इसका अर्थ है उसका ही अधिकारी। जब तक हम दोष दृष्टि से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम प्रवेश नहीं कर सकते उच्च कोटि की भक्ति में। तो इसलिए ऐसे भक्त को हमेशा ही साधु संग करना चाहिए, हमेशा ही अकेले तो रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा भक्त जो है जो हमेशा दोष देखता अकेला रहेगा तो कभी इस भावना से मुक्त नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे भक्त जब हम साधु संग में भक्त करें, भगवान बहुत दयालु है, भक्त लोग भी बहुत दयालु होते हैं, तो उनके संग में उनकी भक्ति होगी, नहीं तो अकेले में भक्ति कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो जब भक्तों के संग में जब हम भक्ति हमारी होती लगती है तो वही दवा है, भक्ति ही दवा है हमारे प्राकृतिक स्वभाव को शुद्ध करने के लिए, दूसरी दवा नहीं है। स्पेशली श्रवणम कीर्तनम हरिनाम, जो हरिनाम का जप है जब हम भक्तों के साथ जब करते हैं तो वही वास्तव में दवा है हमारे मन को पवित्र करने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण प्रकार के अनर्थों से। क्योंकि भक्ति को चैतन्य चरितामृत पढ़ने का है नित्य सिद्ध किसु भक्त कभू न श्रवणाद शुद्ध चित्त करे उदय। भक्ति तो हमारे हृदय में, हृदय में है, जीव का स्वभाव है, लेकिन अनर्थों के कारण वो भक्ति छुप गई है, अनर्थों से ढकी हुई है। और कोई भी किसी में अकेले में की ताकत नहीं है उस अनर्थों को मिटा सके, असंख्य अनर्थ हैं, एक नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, केवल साधु संघ से हमारी भक्ति होती है, उस भक्ति से वो दवा से ही। साधु संघ में हमको प्रोत्साहित होते हैं, हमको प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, और किसी न किसी ढंग से हम सोना भी चाहें जब करते समय तो भी शर्म आती है, ये सब साधु संघ में तो कोशिश करते हैं नहीं सोने के लिए। बहुत ऐसे चीज हैं, साधुओं का संग इतना महान संग है, वो व्यक्ति को शुद्धि कर देता है। इसलिए श्रीपाद रुद्र गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु ने जब क्रमिक भक्ति का वर्णन करते हुए तुरंत ही कहते हैं आदो श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। थोड़ी सी श्रद्धा, जिस अगर थोड़ी आदो बिगिनिंग में प्रारंभ में अगर थोड़ी श्रद्धा है तभी हमारा साधु संग, और साधु संग से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि साधु संग में भजन होता है, तो जब भजन होता है तो हमारी अनर्थ दूर होते हैं, तो ऑटोमेटिक श्रद्धा हम अप्रिशिएट करते हैं भक्तों को, उनका एक छोटा भक्त वो भेद नहीं रखते। कोई व्यक्ति जप कर रहा है, माँ चाहे कनिष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी, कोई खास भेद नहीं रखते भक्त, वो इतना रखते हैं कि हम भक्त के साथ क्या है, कनिष्ठ है तो क्या, कोई भी न्यू भक्त है उसके साथ हमको जप करने का अवसर तो मिला, माला करने का अवसर तो मिला। इस प्रकार से जब हम किसी न किसी ढंग से भक्त में लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो कर्मी की भावना है, योगी की भावना है और ज्ञानी की भावना है और पूरा ये ब्रह्मांड तीनों भावना में ही व्यस्त है। पूरा ब्रह्मांड किसी कर्म, मोस्टली 99% लोग कर्मी की भावना में है। तो ऐसे कर्मी लोग केवल प्रवचन करते हैं, वो प्रवचन वेद मुखे माने अर्धेत वेद मुखे, केवल मुख से बोलते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं। आर्टिस्ट योगी लोग तो इंद्रियों को बस में करते हैं, ज्ञानी लोग इंद्रियों से मुक्त में मुक्त रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति से मुक्त रहते हैं, लेकिन मोस्टली कर्मी लोग हमेशा कुछ भी, उनका धर्म भी उनकी भक्ति भी वो केवल मुख से होती है। तो ऐसे कर्मी लोग इनकी भक्ति मुख से चल रही है, यदि वो भाग्यशाली है किसी न किसी ढंग से साधु संघ में वो बैठ जाते हैं, सुनते हैं, माला का जप करते हैं, तो उनका हृदय धीरे धीरे पवित्र होता है, तो उनकी श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ेगी तो अधिक साधु संघ करेंगे, अधिक साधु संघ करेंगे तो अधिक भजन होगा, अधिक भजन होगा तो अधिक अनर्थ निवृत्त होगा। इस प्रकार से अनर्थ निवृत्ति होते होते जब ज्यादा तो वो निष्ठ हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो अंत में फिक्स होते होते तब रुचि आ जाती है। रुचि आने के बाद हमारी भावनाएं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, बदल जाती है। तो ये भक्त स्वामी सिंधु में हमारे आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से भक्ति का वर्णन किया। अभी इसका वर्णन यदि हम पढ़ें सुने तो हमें ऐसा पता चलता है, प्रारंभिक स्टेज में भक्ति भक्त कृपा के बाद अपने हाथ में अधिक है। जब हम लोग को करना है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हम लोग को ही करना है, दो साधन तो महान साधन है, श्रवणम कीर्तनम, ये स्वयं ही करना है। जब हम स्वयं, इसलिए भाग को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान दो चीज के लिए, कैसे श्रवण कर रहे हैं और जब करने में तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन श्रवण करने में बहुत खतरा होता है। कभी कभी हम मायावादी से श्रवण करने लगते हैं, कभी कभी हम ऐसे श्रवण करते हैं वो व्यक्ति मिसगाइड कर देता है, विजाति भक्तों से श्रवण करने लगते हैं, जबकि सजाति भक्तों से श्रवण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ये मूवमेंट बनाया तो श्री प्रभुपाद जी के एक सिस्टम बनाया और पूरे वर्ल्ड में प्रचार करके पूरे संसार को दिखाया। तो इसलिए हम जब इस सिस्टमेटिक श्रवण करते हैं वैदिक भक्त के जो छात्र हैं तो वो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, उनकी भक्ति से रास्ते से डगमगाने के चांसमाओं के अवसर कम होते हैं। लेकिन ज्यों ही हम श्रवण में सावधानी नहीं रखते हैं तब खतरा होने का अधिक चांस रहता है। तो कहने का अर्थ है कि जो कर्मी ज्ञानी और योगी हैं इस संसार में, वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भक्ति ही जैसे अर्ची पृथु महाराज भगवान के अवतार होने के साथ साथ परम भक्त थे, उनकी तपस्या का वर्णन हम लोग ने पीछे सुना, और अर्ची का एक ही तपस्या थी कि अपने पितु का अपने पति का पालन किया, उनके चरणों का अनुसरण किया, इससे उसे सफलता मिल गई। तो वो अभी देवताओं की पत्नियां उनकी सफलता का वर्णन करते हुए इस संसार में कर्मियों को देख, अब तो देवताओं को देख करके पश्चाताप कर रहे हैं, देखो ये लोग अपने जीवन के उद्देश्य से वंचित हो गए। तो हम लोग एटलीस्ट प्रभुपाद जी कृपा से अपने जीवन से के उद्देश्य से वंचित नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने जो भक्ति का कलयुग के लिए हम लोग के जीव के लिए किस प्रकार से सिस्टमेटिक बर्न किया, सिस्टमेटिक डॉग ईटर, कुत्ता खाने वाले व्यक्ति को प्रेम तक का वर्णन करके सिखाया श्री प्रभुपाद जी, अपने हाथ से सिखाया, हम लोग जानते हैं। यदि उनके राह बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहे, उनकी शिक्षाएं जो उनके श्रीमद् भागवत उनके ग्रंथों में उपलब्ध हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम चलते रहे, तो निश्चित है हम एक समय आएगा हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण। अभी 5 मिनट समय है, किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई टीका है तो पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी का प्रभुपाद जी के पुस्तक में वर्णन है। पा का अर्थ है अधिक परिश्रम करना, फा का अर्थ ना परिश्रम करना मुंह से फेन आ जाए, ब का अर्थ है आपका फेन आ रहा है परिश्रम कर रहे फिर भी आपको हाथ में कुछ लगे ना व्यर्थ है, म का अर्थ है मृत्यु है, अंत में कुछ आपको शरीर छोड़ना है या मोहित हो गए हैं, का अर्थ है आप हमेशा हर चीज करते हुए आप बाउंड्री बना लिए, सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, बैंक में रख लिए, इंश्योरेंस कर लिए, फिर भी डरे हुए बैंक भी खा जाएगी, इंश्योरेंस भी खा जाएगा, चोर भी खा जाएगा, भय है हमेशा भय। एक एक जीव से भय है, जीव जीव एक जीव आपको कोई ओले ले कोई खा ले सब काट ले, इस संसार में भय के सिवाय कुछ नहीं। और प्रश्न किसी का कोई टीका है तो कर सकते हैं भाई, तो अभी नहीं तो हम लोग यहाँ बंद करेंगे। श्रीमद्भागवतम ग्रंथराज, श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गुरु परमानंद हरे।